ओम शांति। बाकी आज हम आप सभी बाबा से मिलने वाले हैं, मैं समझता हूं उसकी तो हर एक के दिल में बहुत बहुत खुशी होगी कि किससे मिलने वाले हैं। इस कुंभ मेले में बड़ी दादियों से, दादी जी, दादी जानकी जी, दादी गुलजार जी, जैसे सभी नदियां इकट्ठी हों तो संगम हो जाता है, तो सभी संगम पर क्या करते हैं, विशेष डुबकी लगाते हैं। और वो निशानी है कि जब ये ज्ञान गंगाएं एक साथ मिलती हैं, ऐसे समय पर ऐसे आप जैसे महान भाग्यशाली आत्माएं विशेष रूप से बाबा से मिलन मनाने के लिए जब पहुंचे हैं, तो ये संगम युग में जो संगम है, ऐसे टाइम पर वातावरण भी इतना श्रेष्ठ, सबके अंदर उमंग और उल्लास और ज्ञान की, योग की जो महीनता है, जो उसकी चरम सीमा कहें, उसका अनुभव कराने के लिए स्वयं दादी जी, जानकी दादी, गुलजार दादी, मनोहर दादी, रत्नमयनी दादी, सभी दादियां और मुख्य भाई, आने वाले आप सब भाई बहनों की सेवा के लिए उपस्थित हैं। तो आप कितनी महान आत्माएं हैं जिनकी सेवा के लिए इतनी महान महान आत्माएं हैं, तो वो महान कितने होंगे जिनकी सेवा के लिए हाजिर हैं। तो प्रैक्टिकल में ये जो वो निशानियां हैं भक्ति मार्ग की, सागर और नदी का संगम, तीन नदियों का संगम, तो उसका प्रैक्टिकल भी तो कभी हुआ होगा। वो इस समय प्रैक्टिकल में सागर, ज्ञान सागर और नदियों का भी आज संगम है, और ज्ञान गंगाओं का भी संगम है। और आप सब क्या हैं, आप सब भाई बहने भी क्या हैं, हाँ? क्योंकि आप भगत तो रहे नहीं अभी, जिन भक्तों को जाकर के डुबकी लगानी हो, ऐसा तो है नहीं। तो संगम में आप सब भी ज्ञान गंगाएं हो, ज्ञान नदियां हो, योगी आत्माएं हो, सागर से मिलन मनाने के लिए सब मधुबन में पहुंचे हैं ज्ञान सागर से। तो कितना हर्ष का दिन है आज, दुनिया वाले भी हर्ष मनाते हैं, नव वर्ष आता है तो बहुत खुशी मनाते हैं, वो भी निशानी है। किस बात की निशानी है, जो हम आप सभी अभी जानते हैं कि पुरानी दुनिया का ये जो अंतिम समय है वो पूरा हो रहा है, और सदा सुख के दिन, सभी के लिए सुख के दिन शुरू हो रहे हैं, जिसके कारण सबको बहुत खुशी होती है। और उसमें भी अगर थोड़ा अच्छी तरह से हम सोचते हैं कि बाबा के जो बच्चे बने हैं, ब्राह्मण बच्चे, उनके लिए ये सबसे अधिक अति इंद्रिय सुख का समय है, जो पहचानते हैं انتظار میں نہیں ہیں، اس انتظار میں نہیں ہیں کہ دیکھیں بابا کیسے آتے ہیں، لیکن جن کو یہ نشچے ہے کہ یہ وہی پرشوتم سنگم یوگ کا ہیرے تلیہ سمے ہے جب سویم پرم پتا پرماتما ہم آتموں کو پھر سے ہیرے تلیہ بنانے کے لیے اس دھرا پر اوترت ہوئے ہیں. اس نشچے سے، اس امنگ سے، اس خوشی سے جب بابا کے سنمکھ ہوتے ہیں اور اس پہچان سے ملاقات ہوتی ہے کہ کس سے مل رہے ہیں، کس سے درشٹی لے رہے ہیں، کس سے مہاواکیہ سن رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کے فلسوروپ پراپتی کیا ہے. اچھی طرح سے جب یہ انوبھوتی ہوتی ہے تو دل میں آتا ہے کہ میرا یہ جنم سفل ہوا، اور یہی جنم سفل نہیں ہوا بلکہ اس کے فلسوروپ 21 جنم تو ستیوگ تریتا کے، لیکن سارا ہی کلپ سفل ہو جاتا ہے. اتنی اونچی پراپتی کلپ میں ایک ہی بار ہوتی ہے، اور اس پراپتی کا یہ سہاونا پرشوتم سنگم یوگ. آپ سب کا کیا آج، یعنی دل میں کیا چل رہا ہے، کس سے ملنے کے لیے آئے ہیں؟ کلیئر ہے کس سے ملیں گے شام کو؟ کیونکہ مجھے ٹاپک جو دی گئی ہے ابھی بتایا، سہج راج یوگ. تو سہج کا مطلب کیا ہوا؟ سہج جو سب بات سہج ہو جائے وہی ہوگی نا. سہج مانا نیچرل، سوبھاوک، اور جو سرل ریتی سے ہو. تو بابا نے تو اتنا سرل کر کے ساری بات سنائی ہے کہ کبھی کبھی بڑا اتنا سرل ہوتا ہے کہ وشواس نہیں ہوتا ہے. جب بابا کہتے ہیں بچے اور کچھ نہیں کر سکتے، صرف اتنا ہی سوچو میں آتما ہوں اور شیو بابا کے بچے ہیں، اتنا ہی نشچے کر لو، یہی یوگ ہے. نہیں تو پریبھاشا تو یوگ کی بہت لمبی چوڑی سب سناتے ہیں. تو آج سہج راج یوگ، جب یہ نشچے ہوتا کہ ہم کس سے ملن منا رہے ہیں، کس سے ملیں گے یا ملن منا رہے ہیں، پہلے تو یہ پوچھیں آپ سے، ملیں گے یا ملن مناتے رہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں، مناتے رہتے ہیں؟ دن میں کتنی بار مناتے ہیں؟ نرنتر یوگی رہتے ہیں یا پانچ بار ٹریفک کنٹرول کا گیت بجتا اس سمے یوگی بنتے ہیں، یا صبح اور شام کے یوگی ہیں؟ نہیں، بابا نے بہت سرل کر دیا. یہ نشچے کرو میں آتما ہوں، شیو بابا کا بچہ. آتما بھی انادی اور اویناشی ہے، باپ بھی انادی اور اویناشی ہے، ان کا سمبندھ بھی انادی اور اویناشی ہے، تو یوگی بھی نرنتر انادی اور اویناشی ہے. لیکن نشچے چاہیے، اس لیے بابا کے مہا واکیوں میں آتا ہے بچے نشچے میں وجے ہے. کس بات پر وجے؟ جو سنشے آتا ہے اس پر وجے. इस बात में संशय न आए कि सचमुच हम भगवान के महावाक्य सुनते हैं या किसी आत्मा के महावाक्य। उस निश्चय से जब सुनेंगे कि कौन सुनाने वाला, तो किससे योग रहेगा? एक बाप से रहेगा, सहज राजयोग। इतना सहज, इतना सरल। मुझे बहुत पुरानी बात एक याद आ रही है, गुड़गांव से कुछ माताएं मधुबन आ रही थी। गुड़गांव सुना है आप सबने, कहां पर है? दिल्ली के पास है। और माताएं अपनी वो हरियाणा की जो भाषा है वही बोलती हैं। रास्ते में टीटी ने ट्रेन में पूछा, माताजी कहां जा रहे हैं? बोलती हैं, हम यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं माउंट आबू। तो उसने सोचा शायद इनके बच्चे कोई पढ़ते होंगे, लेकिन माउंट आबू में यूनिवर्सिटी का नाम तो सुना नहीं है। तो फिर से उसने पूछा कि कौन सी यूनिवर्सिटी है? कि ईश्वरी यूनिवर्सिटी है, भगवान पढ़ाते हैं वहां, और हम वहां पढ़ने जा रहे हैं। उस बेचारे के समझ में नहीं आया। बाद में कहीं और किसी से बातचीत करके कुछ समझा उसने, लेकिन वो अनपढ़ माताएं, पहले तो उस भाई ने समझा इनके बच्चे कोई पढ़ते होंगे माउंट आबू, क्योंकि वहां पर हैं कुछ स्कूल ऐसे अच्छे अच्छे लेकिन जब माताओं ने बोला नहीं हम खुद पढ़ने जा रहे हैं, तो उसको आश्चर्य हुआ। लेकिन माताओं का निश्चय, बुजुर्ग माताएं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं, अनपढ़ माताएं, लेकिन उनके निश्चय की कमाल। उस टीटी को भी आश्चर्यवत कर दिया कि हम तो भगवान से पढ़ने के लिए जा रहे हैं, हमारा टीचर स्वयं भगवान है। तो उनके निश्चय में थी उनकी विजय। आज इतने बड़े हॉल में, अभी भले आधा भी नहीं भरा है, लेकिन शाम को देखना हर एक को बैठने की जगह जरूर मिलेगी, लेकिन जितने अभी आप खुले खुले बैठे हैं इतना नहीं। तो सभी बाबा से मिलने के लिए आ रहे हैं। आज किसी को बोलें बाबा से मिलने जा रहे हैं, कई बार साथ चल देते हैं ना नए नए भी, चलो भाई हम भी चलते हैं आपके बाबा से मिलने। और जब शाम को देखेंगे कि सामने तो एक बहन जी बैठी हैं, उस समय अगर कोई नया हो और उसको कोई कहे कि देखो बाबा आए हैं, तो नया क्या सोचेगा कि बहन, ये तो सामने बहन बैठी है। एक बार जयपुर से एक परिवार आया था, बच्चे उनके साथ में थे, तो छोटी बेबी थी उनकी, उनको कहा बाबा से मिलो, बोला बाबा कहाँ है, ये तो लुगाई बैठी है। तो बाबा को पहचानने की भी वास्तव में पहले जब तक उसका ज्ञान नहीं, परिचय नहीं, और उस दृष्टि से जब तक सामने देखे नहीं, तब तक बाबा की भासना नहीं आती। तो सहज ज्ञान, सहज राज योग नाम ही इसका इसलिए पड़ा कि चाहे कोई बच्चे हैं, चाहे कोई बड़े हैं, चाहे कोई बूढ़ी माताएं हैं, अनपढ़ हैं, चाहे बहुत पढ़े लिखे हैं, जब तक बुद्धि दिव्य नहीं है तब तक समझ में नहीं आएगा। इसलिए बाबा का पहले असूल था ये, शुरू से, कि पहले सेवा केंद्र पर कम से कम 6 मास जाएं, पवित्र जीवन, पवित्र खान पान वो सब हो, तब बाबा से मिलने आए। क्या कारण था? ये नहीं कि बच्चों को कोई कठिनाई हो, लेकिन कारण उसका यही था कि जब आए तो पूरी पहचान से बाबा से मिले। पहचान से मिलेंगे तो पूरा लाभ लेंगे, पूरा निश्चय से मिलेंगे तो फिर विजय होगी, नहीं तो इधर उधर देखते रहेंगे। जिनको पहचान है वो तो बाबा के साथ एक टिक होकर के आनंद ले रहे होंगे, और जिनको निश्चय नहीं है वो कभी उनको देखेंगे कभी सामने देखेंगे। इसलिए सहज राज योग, सहज सरल, बाबा ने कहा अगर ये हठ योग हो, तकलीफ देने वाली बात हो, मंत्र जाप करने वाली बात हो तो सब कर न सकें, लेकिन ये ईश्वरी योग है, ईश्वरी ज्ञान पर आधारित है और बाप बच्चों को कोई कष्ट नहीं देता है। सरल करके, इतना सरल जो बाबा कहते थे किसकी तबीयत ठीक नहीं हो, बिस्तर पे लेटे लेटे भी बाबा की याद में रह सकते हैं, बल्कि इतने तक कि इस याद के फल स्वरूप, सरल याद के फल स्वरूप स्वयं तो क्या, दूसरों को साक्षात्कार भी करा सकते हैं। इतना सरल भी है, लेकिन साथ साथ बाबा ने कहा इसके लिए नियम भी है। जब तक बुद्धि पवित्र नहीं तो बाबा के साथ लगन लगती नहीं है। सहज याद, बाबा तो बल्कि योग भी कहते थे, योग शब्द का प्रयोग ना करो, बाप को याद करना है, बाप का परिचय हो और परिचय के साथ साथ उनसे प्राप्ति क्या होती है उसका परिचय। वो प्राप्ति जब बुद्धि में आए तो सहज सरल रीति से बाप को याद कर सके। आज उस चीज का अभ्यास चाहिए, क्योंकि इस समय संसार के अंदर आकर्षण वाली बातें बहुत हैं। पहले इतनी नहीं थी, पहले रेडियो सिर्फ था, फिर टेलीविजन भी आई तो दूरदर्शन एक ही चैनल थी, और आजकल तो 100 से ज्यादा चैनल हो गई हैं। चारों तरफ माया का राज है इस समय, और ऐसे टाइम पर जबकि वो माया के राज में टेम्पटेशन बहुत होती है, लेकिन दुख ही दुख है। जितना उसमें बुद्धि लगाते हैं उतना हैरान होते हैं। पहले कभी नहीं सुनते थे कि 25-30 साल की उम्र में किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी की आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, किसी का वाल्व खराब हो जाता है। बहुत बातें आजकल हो रही हैं, क्योंकि माया की टेम्पटेशन बहुत है। लेकिन ऐसे ही टाइम पर सर्वशक्तिवान बाप की शक्ति जो है वो भी सिद्ध होती है, कि जब ऐसा माया का तूफान चारों तरफ चल रहा हो, ऐसे टाइम बाप स्वयं हम बच्चों को गाइड करते हैं, और उनकी गाइडेंस बड़ी सहज और सरल है। लेकिन उसके लिए बुद्धि दिव्य चाहिए। पहले हंसी हंसी में कहते थे भाई ये इतना महीन ज्ञान है, بابا اتنا مہینتا سے سمجھ میں آتا ہے، موٹی بدھی کا کام نہیں ہے یہ، لیکن اتنے ورشوں سے بابا نے جب سے گیان دینا شروع کیا، دیوے درشتی کے دوارا اتنے اچھے انبھو کرا دیے بھائی بہنوں کو، اور ان کو اتنا درڑ نشچے جس کے فل سوروپ ان کی جیون اتنی سریشت بنی، اور ان کو دیکھ کر کے ہر ایک کے دل میں آتا ہے، بھلے دنیا میں کتنا بھی مایا کا پومپ ہے، ان کو دیکھ کر کے دل میں آتا ہے دیوے جیون بنے تو ایسی بنے، پوتر جیون بنے تو ایسی بنے، اونچی جیون بنے تو ایسی بنے۔ اور بابا نے تو اتنی سندر بات سنا دی، بچے اس سمے اگر باپ کو اچھی ریت پہچان کر کے ان کے بنیں گے تو 21 جنم سمپورن پوترتا سکھ شانتی سمپن دیوی سوراج کے مالک بنے گے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ آج کوئی ایم ایل اے بننے کے لیے، کوئی ایم پی بننے کے لیے، کوئی کمیٹی کا پریزیڈنٹ بننے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، کتنا خرچہ کرتے ہیں، لیکن اس کو بابا نے کہا وہ سب کیا ہے؟ الپکال کا پد ہے، الپکال کا سکھ ہے۔ اتنی محنت کرنے کے بعد بھی کوئی ستیوگی دیوی سوراج نہیں مل رہا ہے، اور اس کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے یہ بھی سب جانتے ہیں۔ تو مایا کا راج زیادہ نہیں چلنا ہے، راون کا راج زیادہ نہیں چلنا ہے، پھر سے ستیوگی دیوی سوراج کی ستھاپنا ہونی ہے۔ اس کے لیے اس سمے باپ ہم بچوں کو یوگیہ بنا رہے، اور اس میں بہت سرلتا سے بابا نے کہا ہے بچے من منا بھو کے ارتھ سوروپ میں ٹکو، جتنا ہو سکے پتا پرماتما کو اچھی طرح پہچان کر کے، اس پہچان سے سمبندھ جوڑ کر کے یاد میں رہنے سے پچھلے 63 جنم کا حساب چکتو ہوگا۔ لیکن بابا نے تھوڑا سا اس میں محنت کا کام دیا ہے، پتہ نہیں اتنا خیال میں ہے یا نہیں آپ کو۔ بابا نے کہا بچے جب آپ 8 گھنٹہ یاد میں رہیں گے، 8 گھنٹہ، 24 گھنٹے میں سے 8 گھنٹہ یاد میں رہیں گے تو 63 جنم کا حساب چکتو ہوگا، اور وہ خود کو معلوم پڑتا ہے۔ جیسے جیسے حساب چکتو ہوتا ہے آتما اتنی پاون بنتی ہے، اتنی ہلکی ہو جاتی ہے، اور دھیرے دھیرے نرنتر یوگی بننے کا لکش وہ سامنے چاہیے۔ کبھی کبھی تو ایسا اویکت وانی جب پڑھتے ہیں وہ تو ایک دم اتنی اونچائی کی بات آ جاتی ہے کہ سوائے ایک باپ کے دوسرا کوئی بدھی میں چاہیے ہی نہیں۔ نرنتر یوگ، انتر نہیں چاہیے، اور جتنا اس میں سفلتا پاتے ہیں اتنا اندر سے اتیندریہ سکھ بڑھتا جاتا ہے۔ جتنا اتیندریہ سکھ کے سنسکار بنتے جائیں گے اتنا بھوش کا سوروپ پریکٹیکل اپنا نظر آنے لگتا ہے، کیونکہ ستیوگی دیوتاؤں کے جو جتنے بھی چتر بنتے ہیں، چاہے سری کرشن اور رادھے کے ہیں، چاہے سری لکشمی نارائن کے ہیں، देवी देवताओं के चित्रों के सिवा और किसी के चित्रों में वो चीज मिलती नहीं है जो उनके नैनों से, उनके मस्तक से, उनके होंठों से नजर आती है। जो दिव्यता उन आत्माओं में है और जो अतीन्द्रिय सुख उन आत्माओं को पावन होने के फलस्वरूप प्राप्त होता है वो और किसी में नहीं मिलता है। चाहे कितने भी दूसरों के चित्र आप देखो, वो चीज उनमें नहीं मिलेगी। तो बाबा का जो खास इशारा है, बच्चे ये राजयोग, इस राजयोग से आप राजाओं के राजा बनते हो, राजाओं के राजा, जिन राजाओं की पूजा दूसरे राजा करते हैं। आप देखेंगे जितने भी राजाओं महाराजाओं के महल हैं उनके पास में खास मंदिर बनाते हैं। कलयुगी राजाएं, द्वापर युगी भी, कलयुगी भी, सत्युगी देवी देवताओं के मंदिर बना के उनकी पूजा करते हैं। और आज हम सभी बच्चों को बाबा का निमंत्रण है। किस लिए आए हैं सब? आज तो बाबा से मिलेंगे, लेकिन वैसे हर एक भाई बहन को किस बात का निमंत्रण मिला है कि पिता परमात्मा से 21 जन्म के लिए जीवन मुक्ति पद प्राप्त करने के, सत्युगी दैवी स्वराज प्राप्त करने के, एक जन्म के लिए एक मिनिस्टर बनने के लिए 5 साल के लिए कितनी मेहनत करते हैं? श्री नारायण या श्री लक्ष्मी बनने के लिए थोड़ा अपने आप से पूछना होता है कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। अगर मेहनत नहीं करते तो फिर कंप्लेंट्स रहती हैं, कोई ना कोई कमी रहती है। मेहनत भी है, इसमें कोई शक नहीं है। कहां कलयुगी दुनिया जहां 5 विकारों का राज है, और ऐसे टाइम पर सत्युगी दैवी स्वराज प्राप्त करना, श्री नारायण और श्री लक्ष्मी पद प्राप्त करना अर्थात सर्वगुण संपन्न बनना, 16 कला संपूर्ण बनना, संपूर्ण निर्विकारी बनना, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना, अहिंसा परमो धर्म बनना, ये कोई छोटी बात तो नहीं है। ऐसा बनने के पहले ऐसे संस्कार चाहिए, और ऐसे संस्कार धारण करने के लिए इतना निरंतर योगी बनने का अभ्यास चाहिए। निरंतर योग तभी हो सकता है जब वो सहज योग, अगर विशेष बैठ करके ही योग करना हो तो सारा दिन बैठना, सारी रात बैठना, वो कितने दिन कर सकेंगे आप? इसलिए बाबा ने कहा नहीं, पहली बात है ये निश्चय चाहिए, निश्चय से विजय। दूसरी बात, ऐसा संबंध जोड़ो जिसमें मेहनत ना हो। तीसरी बात, लक्ष्य इतना ऊंचा रखो कि जिसके बाद कोई और लक्ष्य ऊंचा उसके ऊपर रखने की जरूरत ना रहे। और चौथी बात, ये निश्चय चाहिए कि सचमुच ये जो समय है ये युग परिवर्तन का समय है, ये वो समय है जब स्वयं परमपिता परमात्मा हम बच्चों को वही ज्ञान और वही योग सिखा रहे हैं जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत गीता में भक्ति मार्ग में किया गया है, वो पुनः सिखा रहे हैं। तो सीखने वाले कितने महान भाग्यशाली हैं। वहां तो केवल एक अर्जुन का नाम आता है, लेकिन कहा जाता जो ओटे सो अर्जुन। हम आप सभी कौन हैं इस समय? वही अर्जुन है कल पहले वाले। जिन्हों ने फिर से राजयोग सीख करके विजय प्राप्त करनी है। हमारे सामने ऐसी विजयी आत्माएं प्रैक्टिकल में भी देखने में मिलती हैं। जिन दादियों ने 63 वर्षों से या 67 वर्षों से इतना अभ्यास किया है, प्रैक्टिकल में देखने में आता है, उनके वाइब्रेशन, उनके बोल, उनके नैन, उनके चैन, उनके चलना, और उसके साथ साथ ये भी समझ में आता है कि योग में शक्ति कितनी है। 84 साल की उम्र में जानकी दादी इतनी एक्टिव, दादी जी 81 साल की उम्र में इतनी एक्टिव, अगर उनको कहा भी जाए कि थोड़ा आराम कर लो तो वो नहीं करते। सब भाई बहनों के बारे में इतना चिंतित रहते हैं कि सब आराम से रहें, सबको खाना ठीक मिले, सबको बिस्तर मिले, थोड़ा भी किसी को कष्ट ना हो। गुरुओं की तरह नहीं है जो सिर्फ अपना आराम से रहें, बाकी किसकी चिंता नहीं। नहीं, ये ईश्वरी परिवार है और परिवार के बड़े होने के नाते से सबका कितना ध्यान रखते, लेकिन सिर्फ स्थूल ध्यान नहीं। किस बात का ध्यान? कि ये बाबा के वही बच्चे कल्प पहले वाले बच्चे हैं जिन्होंने कल्प पहले अपना सतयुगी दैवी स्वराज का अधिकार लिया था, फिर से आए। तो ये अपना अधिकार और थोड़ा नहीं लें, पूरे का पूरा दें। इस बात को सामने रखते हुए हम सबको किस बात की रियलाइजेशन चाहिए कि हम भी कल्प पहले वाले बाबा के अधिकारी बच्चे हैं और हम निरंतर योगी बन करके अपना अधिकार प्राप्त करेंगे, क्योंकि निरंतर योगी बने बिना संपूर्ण माया जीत नहीं बन सकते। अगर सुबह के टाइम योगी बनो, दोपहर के टाइम पर कुछ और करो, शाम के टाइम पर कुछ और करो, तो क्या होगा फिर? जितना सुबह को कमाई की वो सारे दिन में खर्च हो जाएगा, तो जमा क्या किया फिर? इसलिए बाबा ने बहुत अच्छी युक्ति बताई है, क्योंकि आज का ये विषय जो मुझे दिया गया कि सहज राजयोगी कैसे बने हो, तो उसका बहुत सरल तरीका बता दिया बाबा ने कि एक तो दिन की बिगनिंग, दिन की शुरुआत बहुत अच्छी चाहिए, बहुत पावरफुल चाहिए, अमृत वेले बहुत अच्छा, बड़े प्यार से बाबा के साथ रू रोहन करके आत्मा सर्वशक्तिवान के संग के रंग में रंग जाए और सर्वशक्ति स्वरूप बन जाए, जिससे के पुराना हिसाब सब खत्म हो जाए और आगे के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्कार धारण हो जाए। और उसके साथ में जो बाबा के महावाक्य हैं, बाकी जितनी भी फिलॉसफी की किताबें हैं, लेक्चर हैं, सब हैं, वो रचना की बातें हैं। रचता के महावाक्य जो मिलते हैं, जब वो सुनते हैं, उन महावाक्यों में बड़ी शक्ति है, वो आत्मा के संस्कारों को पूरा चेंज करते हैं। उसको पूरा ध्यान से हम अध्ययन करें, सुने भी, पढ़ें भी, रिवाइज भी करें और उसके गहराई में जाएं कि ये बात अगर समझ में आई तो इससे क्या फायदा, नहीं आती है तो कितना नुकसान होता, और इसको जीवन में कैसे अप्लाई करें। जब इस तरह से अपनी स्टडी करेंगे, क्योंकि हम सब बाबा के बच्चे भी हैं तो ईश्वरी विद्यार्थी भी है, विद्यार्थी होने के नाते से हमारी स्टडी बहुत ऊंची है। ऐसी कोई स्टडी दुनिया के अंदर नहीं है कि जिसको पढ़ाई पढ़ करके मनुष्य से देवता बन जाए, ठीक है, मनुष्य से डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, जर्नलिस्ट बन जाते हैं, वो सब है दुनिया के अंदर, आजकल कंप्यूटर साइंटिस्ट बन जाते हैं, लेकिन ऐसी स्टडी जिससे आप मनुष्य से देवता बन जाओ, नर से श्री नारायण बन जाओ, नारी से श्री लक्ष्मी बन जाओ, जिसमें के बाकी सब बातें स्वतः ही आपको प्राप्त हो जाएं, वो तो स्टडी, वो तो पढ़ाई एक ही बार कल्प में इस पुरुषोत्तम संगम युग पर हम बच्चों को डायरेक्ट परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। इस बात को रियलाइज करना बहुत जरूरी है। और इस पढ़ाई को पढ़ने से सबसे पहली बात तो ये है कि हर एक के चेहरे पर रूहानियत की मुस्कान आ जाती है। सारे संसार में आप चले जाओ, बीकेस के चेहरे पर जो मुस्कान है वो और किसी के चेहरे पे नहीं मिलती। लोग देखते रहते हैं, बड़े ध्यान से देखते हैं, छोटे बच्चों को भी देखते हैं, बड़ों को भी देखते हैं, आश्चर्यवत होते हैं कि आज के इस संसार में ऐसे लाइट, ऐसे मुस्कान आपके चेहरे पर। उनको क्या पता कि हमें कौन मिला है, उनको क्या पता कि हम क्या पढ़ रहे हैं, उनको क्या पता कि हम क्या बन रहे हैं। तो ये नशा चाहिए हमें, निरंतर योग का सहज तरीका है इस नशे में रहना कि हम किसके बच्चे हैं, हम किसके स्टूडेंट हैं। और फिर इसके साथ में भल रहते आप घर में हैं, घर का कारोबार संभालते हैं, पर आपको पता नहीं है कि आप विश्व की सेवा के निमित्त हैं। एक छोटा बच्चा ये सामने बैठा हुआ, ये भी विश्व की सेवा के निमित्त। ऐसे बच्चे कहां मिलेंगे, ऐसी माताएं कहां मिलेंगी, ये तो बाबा के बच्चे ही ऐसे बन सकते। तो बड़ा नशा चाहिए, बड़ा गौरव चाहिए अपने दिल के अंदर कि हम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जैसे ब्रह्मा बाबा का मिसाल है, देखने में ड्रेस में साधारण थे, लेकिन उनका व्यक्तित्व असाधारण। जिसने एक बार बाबा से मुलाकात की, उसके दिल पे उनकी छाप लग गई थी। ऐसे ही बाबा के बच्चों का है, लेकिन वो तब हो सकता है ये पक्का निश्चय रहे कि हम बाबा के बच्चे भी हैं, बाबा के स्टूडेंट भी हैं। हमारा टीचर कौन है, पढ़ाने वाला कौन है हमें, थोड़ा सोच लो अच्छी तरह से। कोई साधारण टीचर नहीं है, बीए बीएड पढ़ा हुआ, एमए बीएड पढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन स्वयं ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा हमारा टीचर है। ऐसे टीचर के हम स्टूडेंट हैं। जरा सोचो, थोड़ा नशा चढ़ना चाहिए, और ऐसा नशा चढ़ना चाहिए जैसे वो पीने वाले का नशा होता ना, वो तो थोड़ा टाइम चलता है, ये ऐसा नशा जो एक बार चढ़ जाता है तो 21 जन्म तक चलता है। तो ऐसे नशे से जब हम खुशी से ऐसे रहते हैं तो याद तो बड़ी सहज हो जाती है। फिर भी अनुभव ये कहता है कि हर बात का समय जरूर होता है। अगर प्रातः समय, जो खास अमृत वेले का समय है, चाहे मधुबन में आप हैं, चाहे सेंटर पर हैं, चाहे घर में हैं, कहां पर भी हैं, वो समय हमारा अपना है। 4 से 5 का समय और किसी का नहीं है, और उस समय टेलीफोन भी बंद कर देने चाहिए। उस समय आप बाबा की याद में बैठो, देश से न्यारे हो करके ऐसा समझ के बैठो कि इस संसार में आने से पहले हम आत्माएं परमधाम में बाबा के साथ थे, और उस समय हम आत्माएं संपूर्ण सतो प्रधान थे। उस निश्चय से बैठो तो इतना आनंद आएगा आपको, इतना शक्तिशाली महसूस करेंगे और इतना श्रेष्ठ अनुभव होगा। यूं तो दिल होगी कि और बैठे रहें, लेकिन इतना समय भी अगर उसी संकल्प से, उसी अनुभव से ऊपर बैठेंगे तो आत्मा इतनी पावन बनेगी, इतनी बुद्धि स्वच्छ हो जाएगी और इतना अंदर से श्रेष्ठ संकल्प आएंगे। और फिर उसके बाद अगर बाबा की वाणी का अध्ययन करें उसी समय, 15-20 मिनट लगते हैं, अगर एक वाणी उस समय पढ़ लें तो आप मानो कि आपने अपने सारे दिन के लिए श्रेष्ठ संकल्पों के लिए जो उसकी खुराक है वो अच्छी तरह से अपने आप को दी। सारे दिन में आपको खुशी इतनी रहेगी, चेहरा खिला रहेगा और कोई भी समस्या सामने आएगी वो समस्या नहीं लगेगी, वो लगेगा ये तो कल पहले भी हमने पास किया था, ये कोई नई बात नहीं। इतना निश्चय होगा और निश्चय में विजय है। और दूसरी बात,
ओम शांति, जो आपको सुना रहे थे उसमें दूसरी बात जो खास ख्याल में आती है, एक विशेष सुबह को याद करना। पीछे सहज साधन, एक तो सुबह को अच्छी तरह से अपनी बैटरी चार्ज करना, जिससे कि सारे दिन के लिए जब मन खुश होता है ना, सवेरे सवेरे आप खुराक अच्छी खा लो, याद की और बाबा के महावाक्यों की, तो उससे मन बहुत ऊंचाई में और बहुत खुशी में रहेगा, तो व्यवहार के अंदर वो कुशलता आएगी। किसी से भी आप मिलेंगे, किसी से भी बात करेंगे तो सबको अच्छा लगेगा। यह है बहुत बड़ी सेवा। और दूसरा है कि हम बाबा के बच्चे हैं, हमें बहुत श्रेष्ठ मौका है इस समय, सारे कल्प के अंदर ये एक मौका है पुण्य आत्मा बनने का, ये कभी ना भूलें। चाहे एक को चाहे 10 को बाबा का संदेश जरूर देना है, ताकि अनेक आत्माओं को बाबा का वर्षा दिलाने के निमित्त बन जाए। क्योंकि सत्युग में ऊंच पद पाना है, सुबह के अभ्यास से, शाम के अभ्यास से या ट्रैफिक कंट्रोल से योग्य बन जाएंगे सत्युग के, पर राज किस पे करेंगे? राज अगर करना है, अगर राज का अधिकार लेना है, प्रजा जरूर चाहिए, प्रजा के बिना तो नहीं, लेकिन प्रजा शब्द ना कह करके, क्योंकि सत्युग में प्रजा का शब्द नहीं है, वहां तो विश्व महाराजन विश्व महारानी के साथ में जो उनकी प्रजा है वो भी उनको माता पिता के रूप में देखती। तो अपने भाई बहनों को रास्ता दिखाना है, वो पुण्य का कार्य जरूर करना है। चाहे एक को संदेश दो, चाहे 10 को दो, लेकिन अनुभव से दो, तोते की तरह नहीं, बड़े प्यार से, बड़ी रिस्पेक्ट से और बहुत ऊंचे भाव से जब किसी को बाबा का परिचय देंगे और साथ में उनको ये बताएंगे कि ये परिचय प्राप्त करने से आप सत्युगी दैवी स्वराज के मालिक बनेंगे, तो उनको बहुत खुशी होगी। ये जरूर करना है। इसके फलस्वरूप आप देखेंगे कि आपकी अपनी स्थिति इतनी ऊंची बनेगी, एक एक दिन की स्थिति आप देख सकते हैं, अपना चार्ट नोट कर सकते हैं कि खुशी का कितना पारा दिन ब दिन चढ़ता जाता है। और फिर एक दिन ऐसा देखेंगे कि निरंतर अति इंद्रिय सुख के अनुभव में रहेंगे, वो है सच्चा सच्चा राजयोगी जीवन। जब निरंतर ऐसे जीवन में रहेंगे, वो संस्कार साथ में ले जाएंगे, तो सत्युग से जब आरंभ करेंगे, चेहरा सदा मुस्काता रहेगा। उसकी निशानी है देवताओं के चित्र। कभी भी आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जो मुस्काए नहीं। तो वो मुस्कुराहट का आधार है इस समय बाबा की याद से और सेवा से अति इंद्रिय सुख के अनुभव में निरंतर रहना। ऐसा रहने के लिए सब तैयार है ना? रहेंगे या बहुत सोच विचार में है कि कैसे रहेंगे? भाई ये तो बड़ी सरल बात बता रहे हैं। तो ऐसा खुशी जैसी खुराक नहीं जो कहते हैं, उसका सरल तरीका है कि अपना लक्ष्य चाहिए। हम आपको एक बात छोटी सी सुना के पूरा करेंगे। शुरू शुरू में 1959 की बात बता रहा हूं, जब पहले पहले हमने ज्ञान लिया और बाबा से मिलने आए, बाबा के बन गए, और उसके बाद कुछ समय के बाद बाबा बॉम्बे में आए थे। तो बाबा के महावाक्य सुनते और पढ़ते थे, तो बाबा के महावाक्य थे, बच्चे जब तक किसी की सेवा ना करो तब तक नाश्ता नहीं करना। तो सुबह को बाबा से डायरेक्ट वाणी सुन के और फिर पास में हैंगिंग गार्डन चले जाते और वहां किसी ना किसी को संदेश दे करके फिर वापस आके बाबा को वो सारा समाचार सुना के उसके बाद नाश्ता करते थे। तो बाबा के महावाक्य भले वो 1959 के हैं, पर आज भी मैं कहूंगा कि आज भी उनकी वही वैल्यू है, उनकी वही कीमत है जो उस समय थी। आप करके देखो, अगर इस जीवन में सदा खुश रहना है, सदा आनंदित रहना है और साथ में समाज के, क्या कहें, समाज के वैल्यूएबल सर्विस करने वाले बनना है, तो ये एक अपना प्रिंसिपल बना लो कि जब तक मैंने किसी को बाबा का संदेश नहीं दिया तब तक नाश्ता नहीं करना है। और दूसरी बात खास पक्की याद करनी है कि सारे दिन में कोशिश करनी है कि मेरे मन वाणी कर्म से किसी को, किसी भी आत्मा को दुख ना पहुंचे। क्योंकि हम क्या बन रहे हैं, जरा पक्का याद करना पड़ता है, क्या बन रहे हैं अभी? मनुष्य से देवता। तो देवताएं सबको सुख देते हैं, वो कभी किसको दुख नहीं देते। दुख कौन देता है सभी को पता है ना, उसका नाम तो बड़ा सहज याद आ जाता है। तो हम किसी को भी मन से भी नहीं, वाणी से भी नहीं, कर्म की तो बात ही अलग रह गई, तो किसी को भी हम दुख ना दें, ये मोटी मोटी बात आपको सुना रहे हैं। अगर ऐसा अपनी धारणा बना लें तो आप देखेंगे कि सारे दिन में आप निरंतर योगी भी बन जाएंगे, श्रेष्ठ कर्म करने वाले सहज राजयोगी भी बन जाएंगे और सत्युगी दैवी स्वराज के अधिकारी भी बन जाएंगे। ओम शांति। अभी 5 मिनट के लिए बिल्कुल सब बातों को भूलकर बाबा के पास चलिए और अपने सर्वशक्ति स्वरूप में स्थित होकर के वाइब्रेशन को, वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने में सहयोगी बनकर के बैठे।